कृत्य प्रजल्प। प्रजल्प किसे कहते हैं? परस्पर कथोपकथन का नाम जल्पना या प्रजल्प है। वर्तमान जगत में बहिर्मुखता इतनी है कि दूसरों के साथ वार्तालाप करने में प्राय बहिर्मुख जल्पना हो पड़ती है। अतः भक्ति साधकों के लिए जल्पना बहुत ही अहितकर होती है। भक्ति के अनुशीलन में नाना प्रकार की जल्पनाएं हो सकती हैं। साधकों के लिए इस प्रकार की भक्ति संबंधित जल्पनाएं श्रेयस्कर होती हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, तथापि अस्मि कदाचित् धामधीशो नाम जल्पनी अवद्य वृंदान स्तारणी नाम भासो प्रसिद्धतम। कार्पण्य पंजिका 16। तात्पर्य है कि भगवान नाम का उच्चारण करते करते यदि जीवन में नाम अभास भी हो जाए तो इस भगवान नाम रूप प्रजल्प द्वारा अर्थात नाम अभास द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का विनाश हो जाता है। कीर्तन, स्तुति, शास्त्र अनुशीलन ये सभी जल्पनाएं ही हैं, किंतु जब ये इतर अभिलाषाओं से शून्य होकर भक्ति के अनुकूल रूप में अनुष्ठित होते हैं तब भक्ति के अंग स्वरूप हो पड़ते हैं। अतएव सिद्धांत यह है कि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल समस्त प्रकार की जल्पनाएं भक्ति विरोधी होती हैं। साधक को खूब सावधान होकर ऐसे प्रजल्पों से दूर रहना चाहिए। संत महाजनों द्वारा आदृत प्रजल्प ग्रहणीय है। संत महाजनों का आचरण पूर्ण निर्दोष होता है, अतएव उनके द्वारा आचरित प्रजल्पों का हमें आदर करना चाहिए तथा स्वयं ऐसे प्रजल्पों का हमें आचरण करना चाहिए। कुछ अति भक्त लोग समस्त प्रकार के प्रजल्प को प्रत्याग करने का उपदेश देते हैं, किंतु श्री रूपानुगत वैष्णव को श्री रूप गोस्वामी के अनुगत होकर उनके द्वारा बताए गए साधन पथ का सर्वदा अनुसरण करना ही कर्तव्य है। यथा सामृग्य श्रेयस हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमं पूर्वं येन संतः प्रतस्थिरे भक्तिरसामि सिंधु। हमें उस संताप रहित और श्रेय साधन मार्ग का अनुसंधान करना चाहिए जिस मार्ग पर हमारे पूर्व पूर्व संत महाजन अनायास ही विचरण करते आए हैं। व्यास, शुक, प्रहलाद, श्रीमन महाप्रभु और उनके पार्षद भक्तों ने हमें जिस मार्ग का अनुसंधान दिया है वही हमारा महाजन पंथ है। इस पंथ को छोड़कर हमें नए नए अति भक्तों का उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं है। समस्त महाजनों ने हरि भक्ति के अनुकूल प्रजल्पों का आदर किया है, हम इसे उपयुक्त स्थल पर दिखलाएंगे। बहिर्मुख प्रजल्प का प्रकार भेद। बहिर्मुख प्रजल्प ही हरि भक्ति के पथ में बाधक होता है। बहिर्मुख प्रजल्प अनेक प्रकार का होता है। प्रथम वृत्थागल्प, द्वितीय वितर्क, तृतीय परचर्या, चतुर्थ वादानुवाद, पंचम प्रदोष अनुसंधान, षष्ठ मिथ्या जल्पना, सप्तम साधु निंदा, अष्टम ग्राम्य कथा। ये सभी प्रजल्प के अंतर्गत हैं। प्रथम वृथागल्प। वृथागल्प नितांत अहितकर होता है। भक्ति साधकों को वृथागल्प ना कर सत्संग में सर्वदा हरि कथा का श्रवण कीर्तन और निर्जन में हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। गीता जी में इस कथन की पुष्टि इन श्लोकों से कही गई है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता मत चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता 10:8-9। सततम् कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढव्रता नमयन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्तोपासते। गीता 9:14। भक्ति के साधकों का उपयुक्त नियमानुसार अनन्य भक्ति का अनुशीलन करना कर्तव्य है। यदि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यर्थ बातों में ही दिन रात बीत गया तब मेरे नाम का सर्वदा कीर्तन करना चाहिए। भगवान के इस उपदेश का पालन हम कैसे कर सकेंगे? साधकों के लिए संवाद पत्र का पाठ करना बड़ा ही हानिकारक होता है। हाँ, यदि इसमें किसी विशुद्ध भक्त के संबंध में कोई लेखादि हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। गांवों के लोग भोजन के उपरांत अक्सर धूम्रपान करते करते दूसरे दूसरे बहिर्मुख लोगों के साथ गल्प में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोगों का रूपानुग साधु होना बड़ा ही कठिन होता है। उपन्यास पाठ करना भी वृथा गल्प के अंतर्गत है। हाँ, यदि श्रीमद् भागवत के पुरंजन उपाख्यान की तरह कोई उपन्यास हो तो उसे पढ़ने से भक्ति में बाधा नहीं पड़ती, बल्कि उससे लाभ ही होता है। द्वितीय वितर्क। वितर्क भी एक प्रकार का भक्ति बाधक प्रजल्प है। न्यायिकों और विशेषकों के समस्त प्रकार के तर्क बहिर्मुख विवाद मात्र हैं। उनसे चित्त की निर्बलता और चंचलता बढ़ने के अतिरिक्त कोई सुफल नहीं होता। कठोपनिषद का कथन है, नैषा तर्केन मतिरुपायनेया। जीवों की सहज बुद्धि में सुमति नित्य वर्तमान होती है, जो भगवान के चरण कमलों में स्वभावता अनुरक्त होती है। किंतु दिक, देश, भ्रम, प्रमाद को लेकर वितर्क करते करते हृदय इतना कठोर हो जाता है कि स्वाभाविक शुद्ध मति वहां से शीघ्र ही तिरोहित हो पड़ती है। वेदों में जिस दश मूल की शिक्षा दी गई है उसके अनुगत होकर तर्क करने से मति दूषित नहीं होती। क्या भला है, क्या बुरा है, इस प्रकार का वेद अनुगत वितर्क प्रजल्प की कोटि में नहीं आता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, अतएव भागवत करह विचार। श्री चैतन्य चेतामृत। संबंध ज्ञान का निरूपण करने में जो कथोपकथन होता है वह प्रजल्प नहीं है। व्यर्थ तर्क द्वारा जो लोग सभा जय किया करते हैं उन लोगों का अपना कोई सिद्धांत नहीं होता। अतएव तार्किकों के संग का सर्वदा परिहार करना चाहिए। वासुदेव सार्वभौम अपने समय के एक प्रकांड और प्रख्यात मायावादी विद्वान थे। वाद विवाद में पंडितों को परास्त करना ही इनका काम था। किंतु जब से इनका श्री चैतन्य महाप्रभु जी से संग हुआ ये पूर्ण रूप से बदल गए। इनका वाद विवाद का नशा बिल्कुल दूर हो गया। इन्होंने कहा है कि जिस मुख से मैं पहले तार्किक श्रृगालों के संग में हुआ हुआ करने में ही जीवन की अमूल्य घड़ियां नष्ट करता था, आज उसी मुख से कृष्ण हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण करता हूँ। जो परमार्थ विचार में प्रवृत्त हैं उनके लिए वाराणसी के सन्यासी महोदय का ये हृदय उद्गार सर्वदा स्मरण रखने योग्य है। परमार्थ विचार गेला करी मात्रवाद, कहाँ मुई पावो कहाँ कृष्णेर प्रसाद। श्री चैतन्य चेतामृत। वाद विवाद करते करते परमार्थ का विचार तो विद्या हो गया है, अब मैं कृष्ण की कृपा कैसे पाऊं? वृथा तर्कों की उत्पत्ति ईर्ष्या द्वेष दंभ अहंकार आत्म प्रतिष्ठा से होती है। कला प्रिय व्यक्ति व्यर्थ वितर्कों में मत हो पड़ते हैं। भक्ति साधकों को कि वे भगवत तत्व और भागवत चरित्रों के अनुशीलन के समय वृथा तर्क के पछड़ों में ना पड़े। तृतीय परचर्चा। बिना किसी कारण के परचर्चा भक्ति का अत्यंत विरोधी है। बहुत से लोग आत्म प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए परचर्चा किया करते हैं। कोई कोई स्वभावतः दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु होकर उनके चरित्र की चर्चा किया करते हैं। इस प्रकार व्यर्थ परचर्चा में जो लोग मस्त रहा करते हैं उनका चित्त कभी भी भगवान कृष्ण के चरणारविंद को स्पर्श तक नहीं कर सकता, उसमें स्थिर होना तो दूर रहे। इसलिए परचर्चा का परित्याग करना प्रत्येक भक्ति साधकों का प्रधान कर्तव्य है। किंतु कुछ परिचर्चाएं ऐसी हैं जो भक्ति के साधन में अनुकूल होती हैं। ऐसी परचर्चाएं बुरी नहीं, पर चर्चा का संपूर्ण रूप से त्याग तो केवल वनवास में ही संभव हो सकता है। भक्ति साधक दो तरह के होते हैं, ग्रही और गृह त्यागी। गृह त्यागी का विषयों से संपर्क न रहने से वे परचर्चा का संपूर्ण रूप से परिहार कर सकते हैं, किंतु गृही व्यक्ति उपार्जन, संचय, संरक्षण और कुटुंब के भरण पोषण आदि कार्यों से संबंधित रहने के कारण परचर्चा का सर्वदा परिहार करने में असमर्थ होते हैं। इनके लिए कृष्ण संसार में वास करना ही एकमात्र सद उपाय है। समस्त विषय कार्यों को कृष्ण संबंध कर लेने पर उनकी अनिवार्य परचर्चा की जितनी आवश्यकता हो उतनी ही परचर्चा करें। अकारण परचर्चा से दूर रहना चाहिए। तब एक बात है, गुरु जब शिष्य को विषयों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान देने के लिए उपदेश करते हैं, उसे समय प्रसंगवश कुछ-कुछ परचर्चा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे उपदेश परस्फुटित होते हैं। हमारे पूर्व महाजनों ने जिस रूप में परचर्चा की है उसमें कोई दोष नहीं है। उदाहरण के लिए श्री सुखदेव ने विषयी लोगों के चरित्र की आलोचना की है, परंतु उनको परचर्चा दोष स्पर्श नहीं करता। निद्रा नयति नक्तम व्यविने चावया दीवाचार्थे राजन कुटुंब भरनेन वा देहपत्र कलत्रादि शववात्म सैन्य शव सत्य सवपि तेषम प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। श्रीमद्भागवतम 2:1-3:4। राजन, जो ग्रस्त ग्रह के काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनकी सारी आयु यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अनित्य घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह शरीर पुत्र आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी नहीं चेतता। श्री सुखदेव जी ने शिष्यों को उपदेश करने के समय प्रसंगवश विषय लोगों की जो चर्चा की है वह प्रजल्प नहीं है। ऐसे प्रजल्प से जगत का कल्याण होता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने भी अपने शिष्यों को उपदेश करते समय असत वैरागियों के चरित्र की अवतारणा की है। प्रभु कहे, वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तना पारो अमी तहार वदन, क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराए बोले प्रकृति संभाषिया। प्रभु कहे, मोर वश नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे स्पर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो वैरागी प्रकृति अर्थात स्त्रियों से बातचीत करता है, मैं उसका मुख नहीं देख सकता। क्षुद्र जीव मरकट वैरागी अर्थात दिखावटी वैराग्य अवलंबन कर भीतर ही भीतर स्त्रियों से बातचीत द्वारा अपनी इंद्रियों को चराता फिरता है। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, वह स्त्रियों से संभाषण करने वाले वैरागी का स्पर्श नहीं करना चाहता। उपदेश और विषय सिद्धांतों के विवेचन के समय उपरोक्त प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करने से व्यक्ति और समाज का कल्याण नहीं होता। इस उद्देश्य से यदि हमारे महात्मा गुरुजनों ने ऐसी परचर्चा का आचरण कर जगत को शिक्षा दी है, तब उनकी शिक्षा का विरोध करने से हमारा कैसे मंगल हो सकता है। किसी संप्रदाय, समाज या साधारण में प्रचलित कुसंस्कारों की आलोचना उपरोक्त अवस्थाओं में की जाने से उसे प्रजल्प नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना हो पड़ने पर भी वह दोष के रूप में गण्य नहीं होती। परम भागवत मैत्री ऋषि ने वेन राजा के संबंध में कुछ ऐसे ही वचनों का प्रयोग किया है। इथम विपर्ज्य मति पापी यानु पथम गतः अनुनियमान स्तदयन चन न चक्रे भ्रष्ट मंगलम। श्रीमद् भागवतम 4 14:29। इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वेन राजा अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। महर्षि मैत्रेय के लिए ऐसी परचर्चा की उस समय आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने श्रोताओं के समक्ष ऐसी परचर्चा की थी। उनकी यह परचर्चा वृथा प्रजल्प की श्रेणी में नहीं आती। भक्ति साधकों के लिए कल्याण के लिए प्राचीन इतिहासों का वर्णन किया गया है। इन इतिहासों में दुर्जन एवं असाधु व्यक्तियों के चरित्रों की भी जगह जगह आलोचना की गई है। ऐसी आलोचनाएँ कल्याणप्रद और भक्ति के अनुकूल होती हैं, किंतु जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, दम अथवा प्रतिष्ठा आदि प्रवृत्तियों द्वारा प्रचालित होकर परचर्चा करते हैं, वे भक्ति देवी के चरणों में अपराधी हैं। चतुर्थ, वाद विवाद। ये जय की इच्छा से उत्पन्न होता है, ये नितांत है। पंचम, प्रदोष अनुसंधान। ऐसा केवल अपनी कुप्रवृत्ति के कारण होता है, इसका सर्वदा परित्याग करना कर्तव्य है। षष्ठ, मिथ्या जल्पना। वृथा गल्प का रूपांतर मात्र है। सप्तम, ग्राम्य कथा। गृह त्यागियों के लिए सर्वतोभाव से परित्याज्य है। गृह व्यक्ति भक्ति के अनुकूल रूप में कुछ कुछ स्वीकार कर सकते हैं। इतिहास, पशु विज्ञान, ज्योतिष तथा भूगोल इत्यादि बहिर्मुख होने पर अवश्य ही परित्याग किए जाने योग्य हैं। शिशुदेव गोस्वामी की शिक्षा है। मृषाग्रस्तः हैस सतीरस्तः कथा न कथयेत यद भगवान अधोक्षजः, तदेव सत्यम, तदुहेव मंगलम, तदेव पुण्यम, भगवद् गुणोदयम्, तदेव रम्यम, रुचिरम नवनवम, तदेव शशमनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्न वशोषणम नृणाम, यद उत्तम श्लोक यशनुगीयते। श्रीमद्भागवतम 12:12-39:50। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भाव पूर्वक होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है, और उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। साधु निंदा। साधु निंदा रूप जल्पना अत्यंत अहितकर। यदि कोई भक्ति की आशा रखता है, तो उसे यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं जीवन में कभी भी साधु संतों की निंदा नहीं करूंगा। भगवत भक्त ही साधु हैं, उनकी निंदा करने से समस्त श्रेय विनष्ट हो जाता है। परम पावन श्री महादेव की निंदा करके तापसों में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति की कैसी दुर्गति हुई थी, श्रीमद्भागवत इसका साक्षी है। महत व्यक्तियों की अवज्ञा का फल कितना भयंकर होता है, श्रीमद्भागवत में देखिए। आयुः श्रेयं यशो धर्मं लोकमाशीष एव च, हन्ति श्रेयंसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः, श्रीमद्भागवतम 10:4-46। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इस प्रबंध का सारांश यह है कि भक्ति के साधक भक्ति के अनुकूल समस्त प्रकार के प्रजल्पों का यत्न पूर्वक परित्याग करेंगे। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में वाचो वेगम द्वारा जिस वाणी वेग को सहने के लिए उपदेश दिया गया है वे केवल मात्र नमैतिक वेग मात्र है। प्रजल्प का परित्याग करने से वाणी अपने आप सदा के लिए नियमित हो जाती है। निष्पाप रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए वाणी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरे लोगों की बात को लेकर चर्चा करने से वह निरर्थक जल्पना हो पड़ती है। अतः भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया है, पर स्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति सा आशु भ्रश्येते सर्वार्थ दस्यत्याभिनिवेशतः श्रीमद्भागवत 11:28-2। जो दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे असत विषयों में अभिनिवेश के कारण शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं।